शांति। हम सभी बहुत 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 सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा का अनमोल रत्न, बाबा के विशेष रत्न आदरणीय मोहिनी दीदी जी हमारे बीच हैं, जो बाबा ने वर्तमान समय आपको सेवा दी है पूरे ब्रह्मा कुमारीज के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, और आप बाबा का हमेशा से ही बहुत प्यारा राइट हैंड बनकर रहे हैं। ऐसे आदरणीय मोहिनी दीदी जी का हम एक हाथ उठाकर अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी जी, इनका पूरा बहुत बड़ा लौकिक परिवार ज्ञान में है, जिन्होंने बाबा को मम्मा को पहचाना, गुप्त वेश में आए हुए प्यारे शिव बाबा को पहचाना, और बड़े लौकिक परिवार में लगभग सभी विशेष आत्माएं दिल्ली में, विदेश में और भारत के अन्य स्थानों पर बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई के रूप में सेवा संभाल रहे हैं। वो तो जब आपका इनका सुनने प्रेरणा में सुनने को मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा परिवार आपका बाबा की सेवा में उपस्थित है हमेशा, और पिछले 65 वर्षों से अधिक समय से आप बाबा की सेवा में तत्पर हैं, भारत में, विदेश में। और सोचने की बात यह है कि दिल्ली से ही आपने ये ज्ञान प्राप्त किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आपने लौकिक पढ़ाई पढ़ी, और उसके बाद दिल्ली से सेवा प्रारंभ करके बाबा ने आप जैसे योग्य सेवा करने वाले एक फरिश्ते को विदेश में भेजा, और विदेश में जाकर इतना साधारण काम नहीं है, भारत की सनातन सभ्यता को उसके बीच में पहुंचाना, और जैसे आज का विषय है सर्व खजानों से उनको भरपूर कराना, तो आपने पांचों ही कंटिनेंट्स में जाकर खूब दिल से सेवा की, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के आप रीजनल कोऑर्डिनेटर बनकर रहे और सब तरफ सेवा करते रहे। अव्यक्त परिवार के रूप में बहुत रूहानियत भरी आपकी सुबह सुबह क्लास सुनने को मिलती है, और बहुत अच्छी मनन चिंतन ज्ञान का जो ब्राह्मणों से इस तरह आप शेयर करते हैं जैसे कोई बड़ी दीदी, बड़ी बहन, बड़ी दादी परिवार में बैठकर अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, इस तरह से वो आपकी बातें सुनने में आनंद आता है। कॉल ऑफ टाइम, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी सेवा जो भारत में होती है विदेशियों की, वो सेवा आपने 1998 से यहाँ शुरू की थी। 1999 में न्यूयॉर्क में पीस विलेज के रूप में एक्वायर की जगह, और बहुत बड़े रूप में वहाँ सेवा हो रही है, बहुत बड़ा है पीस विलेज न्यूयॉर्क में, तो वहाँ भी आपने बहुत विदेशियों की सेवा की है। तो भारत में रहते हुए आजकल भी आप बहुत बहुत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, हर श्वास, हर सेकंड आपका सेवा में उपस्थित है, आपका दृष्टि देना, आपका योग कराना, हर चीज बहुत बहुत प्रभावशाली है। तो ऐसे आदरणीय मोहिनी दीदी जी से हम आज सुनेंगे कि सर्व खजानों से भरपूर कैसे बने आत्मा, तभी तो माला माल होकर अपने घर जाएगी, हम अपनी कमाई करके जाएंगे, तो सर्व खजानों से भरपूर कैसे बने आदरणीय मोहिनी दीदी जी।
ओम ओम शांति। बहुत बहुत खुशी हो रही है, गौरव महसूस हो रहे हैं अपने इतने बड़े ईश्वरीय परिवार को सामने देख, इतनी हंसों की बहुत सुंदर सभा आज मेरे सामने है, इसलिए मुझे बहुत बहुत आप सबसे मिलकर बहुत खुशी है। कई तरफ से भाई बहन आए हैं, पंजाब का मुख्य जोन है, और चंद्रमणि दादी हमारी पंजाब की श्रेणी, तो हम लोग दादी चंद्रमणि और मैं, मुझे याद है कि जब अमृतसर में गुरुओं का सम्मेलन होता था और एक बार उन दिनों में हम लोग मार्च निकालने थे, तो जब मार्च निकालने का अमृतसर में प्लान हुआ तो उस समय विरोध तो था ही ब्रह्मा कुमारियों के लिए, तो कई दुकानदार थे, क्योंकि जब मार्च निकलनी थी तो बाजार के बीच में से जाना था, मुझे नाम वगैरह याद नहीं बाजार का, तो कई दुकानदार लोगों ने कहा कि आप यहां से नहीं जा सकते हैं। तो हम लोगों ने उन दिनों में दादी गुलजार संदेश लाती थी, हमने कहा दादी बाबा से पूछिए कि हम मार्च निकालें कि नहीं, तो बाबा ने कहा कि चलो थोड़े बहुत पत्थर अगर फेंके भी उन्होंने, जरा सा खून निकल भी आया तो कोई बड़ी बात नहीं, निकालो। तो चंद्रमणि दादी ने कहा कि आप आओ अमृतसर, तो मैंने कहा जरूर आएंगे, तो वो मार्च हम लोगों ने निकाली। कुछ गलियां बहुत छोटी छोटी थी और बिल्कुल जैसे दो तरफ दुकान थे और बीच में से, तो चंद्रमणि दादी और मैं दोनों आगे आगे मार्च में हम दोनों थे। हमने कहा जो होगा पहले हम लोगों को होगा, फिर बहुत भाई बहन तो नहीं थे उस समय, तो भी सैकड़ों में तो थे ही, सारे पंजाब से आए थे और हम लोग मार्च निकाल रहे थे, तो हमें पता था किस स्थान पर वो दुकानदार कुछ कर सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है जो होगा, तो मार्च निकालते रहे। और जब वो स्थान पर हम पहुंचे तो ऐसे तो देखिए कई तरह का अभ्यास हमें बाबा ने कराया, अशरीरी रहो, देह अभिमानी रहो, बाबा की याद में रहो, तो ऐसे टाइम पर हम लोग अपनी उस स्थिति को रखते हुए वहां से गुजरे। बहुत शांत था, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे अभी तक भी अपनी न केवल ये पर कई खासकर अमृतसर की ऐसी ऐसी यादें हैं, क्योंकि उन दिनों में एक अमृतसर, एक कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, करीब 7 ही स्टेट्स में 7 ही सेंटर थे। जब मैं ज्ञान में आई तो सिर्फ 7 जगह पर सेवा होती थी, और बाबा कहता था बच्ची ऐसा टाइम आएगा जो एक एक गली में बाबा का सेवा केंद्र होगा। और जब आज हम सुनते हैं एक एक सेंटर और कितनी गीता पाठशालाएं, कोई बता रहा था यहाँ पर कि हर महीने कितनी गीता पाठशालाएं, कितने ही भवन बनते हैं, कितनी रिट्रीट के स्थान बनते हैं। ये थोड़ा सा अपने में अपने भाग्य को समझने के लिए कहें, भाग्य की महानता कहें, कि हम ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो विश्व में सबसे बड़ा परिवार है। हमारा परिवार विश्व में सबसे बड़ा है। परिवार की कई परिभाषाएं हैं, पर एक परिभाषा है कि जिनका एक ही भंडारा हो, किचन कहो, भंडारा कहो, जहां पर सब मिलके खाना बनाएं और सभी वहां से भोजन करें, ये परिवार की परिभाषा देते हैं। तो यहाँ पर हाँ, बाबा का भंडारा, आप लोग सभी ब्रह्मा भोजन खाते हैं अमृत वेले से रात्रि तक, हर प्रकार का ब्रह्मा भोजन हम सबको मिलता है। तो सदा याद रखिए कि हम विश्व में सबसे बड़ा परिवार है, ठीक है। दूसरी बात, एक ऐसा परिवार है जिसकी अपनी यूनिवर्सिटी है। हम पढ़ने नहीं जाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने नाम रखा बाद में, पहले तो ओमंडली था, फिर विश्वविद्यालय। तो गवर्नमेंट जब हम लिखते थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो उन्होंने कहा विश्वविद्यालय नहीं लिख कह सकते। तो अब लोगों ने काफी ऊपर जा करके उनको बताया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कहते थे यह ज्ञान सारे विश्व के लिए है, इसलिए एक ही विश्वविद्यालय। और वो लोग कहे आप कह नहीं सकते, और बाबा कहे तो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय। तो बाबा के जो महावाक्य होते थे, हम लोग तो उसी बात को लेकर जहां भी जाते थे तो अपना परिचय देना है, या कोई वीआईपी है, मिनिस्टर्स हैं, तो हम उनको यही कहते थे कि ये विश्वविद्यालय है। और आज हम ये कह सकते हैं कि सारे विश्व में ये विश्वविद्यालय 130 देशों में तो रजिस्टर्ड मतलब ऑफिशियल लाइसेंस है, सब कुछ है। लेकिन कोई ऐसे भी देश हैं जहाँ पर सेवा केंद्र नहीं है, पर छोटे छोटे स्थान हैं, कोई किसी के संबंधी हैं, कहीं कोई छोटा क्लास चलता है। तो आज ये विश्वविद्यालय है, एक ही विश्वविद्यालय है। दूसरे जो भी विद्यालय हैं वो सारे विश्व में नहीं है। हम लोगों की जितने भी धार्मिक स्थान हैं, पार्लियामेंट हैं, कुछ भी है, परंतु हम सबसे संख्या में कहें, क्वालिटी में कहें, हर एक विद्यार्थी के जीवन से कहें, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ठीक है। एक ऐसा परिवार जो व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है, अनुशासित है, चाहे वो परिवार के रूप में, चाहे विद्यालय के रूप में। एक इतना जिसको हम कहते हैं कि साधारण तरीके से सब कुछ कार्य करते हुए न केवल अलौकिकता है, परंतु बड़े बड़े लोग, आजकल एक बहुत बड़ी बोस्टन में यूनिवर्सिटी है, उसको MIT कहते हैं, बहुत सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में संपर्क बनता रहा है। वो इस बात को देखना चाहते हैं कि माताएं और बहनें कैसे इतनी बड़ी संस्था को चला सकते हैं। माताएं अपने लिए तो ताली बजाओ, भाई तो बजाएंगे ही, पर आज हम सभी माताएं बहनें भाई भी जब हम बाबा के पास आते हैं, ये मैं अपने अनुभव से, हमें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी मतलब ठीक है, जो कुछ थोड़ा कॉलेज में पढ़ लिया या पूजा कर ली, पाठ कर लिया, परंतु बाबा ने न केवल अपना परिचय, रचता और रचना का ज्ञान हम सब बच्चों को दिया। अब ज्ञान को समझ कहते हैं, और उस समझ के आधार से जब बाबा की पहचान हुई, तो बाबा से बहुत सुंदर सर्व संबंध का नाता जुटा। देखिए लौकिक में भी जो बच्चा होता है उसके व्यक्तित्व को देख के उसके माँ बाप जान कहते हैं, अरे आप तो आपके माँ पर हो, आपके बाप पर हो। तो ये जो बाबा कहता है ना बाप समान या सर्व खजानों के मालिक, तो आप सोचिए इतना भी अगर हम स्मृति में रखें कि मेरे माता पिता कौन है, मैं किस कुल की हूं, कैसे परिवार से हूं, तो एक सभी परमात्मा को हम मानते थे, पूजा करते थे। आप बचपन के दिन याद करिए, जब आपको पहले पहले बाबा का परिचय मिला और हमें ब्रह्मा मुख से यह ईश्वरीय अलौकिक जन्म मिला, तो जो दिल में हमारे माता पिता का जो प्यार, माता पिता का जो स्नेह, वहां तो देखो बच्चा थोड़ा सा भी लौकिक जीवन में बड़ा होता है, कौन से स्कूल में भेजें, कौन सी यूनिवर्सिटी में भेजें, क्या पढ़ाएं। यहां बाबा ने कहा वो तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा। हमारे बाप ने कहा कि मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा। तो बाबा हमारे परम शिक्षक। मैं इसलिए इस बात को फिर से दोहरा रही हूं जो आप सब जानते ही हैं कि थोड़ा सा मेरा कितना ऊंच भाग्य है कि माता पिता ने कहा मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा पढ़ने के लिए, मैं पढ़ाऊंगा। तो माता पिता के साथ फिर टीचर का संबंध जुटा। फिर थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, जीवन आगे बढ़ती है तो सोचते हैं कौन से गुरु के पास भेजें। तो बाबा ने कहा कहीं जरूरत नहीं, मैं ही सतगुरु हूं। तो ऐसे ही माता पिता, सत टीचर परम शिक्षक और सतगुरु बाबा की हम सभी। अब आप देखिए कि अगर मैं माता पिता की संतान परम शिक्षक तो मैं किस समान हूं, माता पिता के समान हूं, परम शिक्षक के समान हूं, परम सदगुरु बाबा की श्रीमत पर चलने वाली हूं। तो ये जो हम कहते हैं ना मैं बाप समान बनना है, तो बाप समान हैं के बन रहे हैं, कौन कौन समझते हैं बाप समान है? तो अगर आप बाप समान नहीं तो किसके समान है? थोड़ा सोचिए। मैं तो पहले से ही बचपन से जब बाबा के बने, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना चंद्रमा की कलाएं होती हैं, तो हम लोगों ने भी अपना जन्म जन्मांतर आगे चलते रहे युगों में, तो जो बाप समान हमारी संपन्नता थी, एकदम जैसे बाबा की तरह ही थे, सतयुग के देवी देवताएं थे, धीरे धीरे हमारी कलाएं कम होती गईं। और फिर ऐसा समय आया जो हमारे सब गुण शक्तियां ज्ञान चला गया। फिर बाबा ने आकर के एक स्मृति दिलाई कि बच्चे आप तो मेरे बच्चे हो, मैं तुमको पढ़ाता हूं। तो सिर्फ स्मृति दिलाई, क्या स्मृति दिलाई, जो हम थे हम सो हम। तो अगर आप थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर, मैं तो बाप समान हूं। फिर बाबा अव्यक्त हुए, उस समय अव्यक्त शब्द फरिश्ता शब्द बहुत कॉमन नहीं था, जैसे आजकल। तो जब बाबा अव्यक्त हुए, फरिश्ता बनना है, तो मैं ये कहती हूं कि जो फरिश्ते की संतान नहीं है क्या वो फरिश्ता बन सकता है? बन सकता है। तो बाबा अगर हमारा फरिश्ता है तो हम कौन है? बोलो, फरिश्ते है ना? हाँ कि नहीं? अब ये अंदर में, क्योंकि मेरे को तो शुरू से बचपन से लगता था कि परमात्मा भगवान जो है उसके गुण, मैं संतान हूं। माता पिता और बच्चों का आपस में काफी समानता होती है, हालांकि बच्चा बाप की तरह लायक नहीं होता, पर है तो बच्चा ना। तो मैं सबको कहती हूं, अभी बनना बनना नहीं करो, मैं हूं, अभी मुझे संपन्न बनना है। जो बाबा कहता है सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न। पर क्या होता है कि कभी कभी, जैसे आज सवेरे बहुत अच्छा व्यक्ति इशारा था कि कल्याण एक बिंदु है, अगर आप जो कुछ भी होता है इसमें कल्याण है, इसमें कल्याण है। बाबा ने कहा संशय और व्यर्थ संकल्पों की, संकल्प और व्यर्थ संकल्प न चलाकर इसमें भी कल्याण है, बिंदु लगा दो। इतनी सरल विधि है और बहुत ऊंची सिद्धि है अगर हम उसको व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल में लाएं। अब होता क्या है कि संगम युग की हमारे जीवन में माइनस प्लस चलता है, प्लस होता है अच्छा है, फिर कोई संशय आ गया, व्यर्थ संकल्प चल गए तो थोड़ा माइनस हो जाता है। तो संपन्न बनने में शक्तियां जमा करते हैं, फिर शक्तियां व्यर्थ भी चली जाती हैं, तो माइनस प्लस में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम प्लस प्लस ही करते रहे तो खजाना भरपूर रहेगा। तो बाबा रोज हमको मुरलियों के द्वारा, वरदान के द्वारा, और आजकल अव्यक्ति अव्यक्त मुरलियों से, अव्यक्ति इशारे के द्वारा हम बच्चों को संपन्न बनाते हैं। अब मुझे ये लक्ष्य रहे कि मुझे जमाई करना है, माइनस नहीं होने देना है। उसके लिए बाबा ने आज कहा कि सदा समर्थ सोचो। ये समर्थ शब्द 18 जनवरी को 69 में, जब जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, तो उस समय बाबा ने संदेश, थोड़ी शॉर्ट मुरली चलाई और दादी गुलजार ने भोग लगाया, फिर संदेश सुनाया। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा स्मृति की सामर्थ्य, ये कितना सिंपल है कि अगर चाहते हैं कि संकल्प में शक्ति हो तो वो स्मृति का संकल्प। तो सारा खेल क्या है, सारा पुरुषार्थ क्या है, सिमृति विस्मृति, सिमृति विस्मृति। अब बाबा जो अंडरलाइन कराते हैं कि उसको सदाकाल, सदाकाल। एक बार बाबा नहीं, कई बार कहते हैं, देखो सत्य ज्ञान है तो जो एक शब्द हमने कहीं, उन्हें 90 साल पहले सुना, हमने 70 साल पहले सुना, वो आज तक भी सत्य है। तो जैसे बाबा हमेशा स्मृति दिलाते हैं, बच्चे आप कौन हो, तो वो स्मृति एक स्वाभाविक रहे हमें, कोई किसी टाइम भी 24 घंटे में हमसे कोई पूछे आप किसकी संतान है, कोई ऐसा होगा जो भूल गया होगा? एक बार मामा से हमने पूछा, मामा आपको कितनी याद रहती है दिन भर में, और कौन से बाबा की याद होती, ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? तो मामा तो बहुत मित्रता थी, चाहे वो बड़ी थी पर बहुत बहुत प्यार करती थी सबको। तो मामा ने कहा, मेरे से ये प्रश्न पूछो कि मैं भूलती कितना टाइम हूँ। तो हम सभी के लिए भी अगर हम लक्ष्य रखते हैं तो ये नहीं याद कितना करते हैं पर भूलते कितना। फिर कहा कि मेरे लिए तो बाप दादा दोनों समान है, शिव बाबा को याद करती हूँ तो भाई ब्रह्मा के द्वारा ही हमको शिव बाबा का परिचय मिला, ब्रह्मा बाबा को याद करती हूँ तो ये शिव बाबा का रथ है, मैं अलग कर ही नहीं पाती उनको। आज कभी कभी बाबा के कई बच्चे आते हैं, हमारा तो निराकार से संबंध है, हम तो बिंदु रूप को ही याद करते हैं, पर बिंदु रूप भी किस रूप में आके उसने बताया कि मैं बिंदु हूं, निराकार ने भी कैसे बताया कि मैं बिंदु हूं, साकार के द्वारा, राइट? तो वो तो कंबाइंड हो जाते हैं ना, बाप दादा, माता पिता बाप दादा कंबाइंड हो जाते हैं। तो जब फॉलो करना होता है, बाप समान बनने की बात आती है तो निराकार बाप समान या साकार बाप समान? निराकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ, न केवल सुनाते हैं परंतु मैं बहुत समय तो नहीं, 11 साल के आसपास ब्रह्मा बाबा के साथ थी, बाबा के कदम कदम में हर कर्म में जो शिक्षा थी वो शिव बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप था। तो हमने अपनी आंखों से देखा, कई पूछते हैं ना आप लोगों ने भगवान को देखा है, हमने कहा भाई देखा है, कैसे देखा है? एक ने मेरे से पूछा कि भगवान का व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, मैंने कहा हमारा यज्ञ। एक एक बात अगर यज्ञ की आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा, शिव बाबा जो हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो यज्ञ की स्थापना की है, 90 वर्ष यज्ञ को हो जाएंगे इस साल, ये तो बहुत अंदर में खुशी होती है। तो अपनी याद को भी बाप और दादा, मेरा बाबा से मिलना हुआ जब मैं 15 साल की थी। अभी अभी मैंने स्कूल पूरा किया था, कॉलेज में जाने लगी थी, तो बाबा ने, बाबा दिल्ली आए तो बहनों ने कहा कि आप मिलने आओ बाबा से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कॉलेज के बाद आऊंगी। तो बाबा एक कमरे में, इससे आधी टेबल जिसको स्टूल कहते हैं, सामने रखा था, बाबा बैठे हुए थे। तो बाबा ने पहले दृष्टि दी, फिर बाबा कुछ महावाक्य बोलने लगे। उस समय हमें ये तो पता नहीं था कि वरदान क्या होते हैं, त्रिकालदर्शी है, उसको सब मालूम है। तो हमने ये देखा कि जो अनुभव हुआ, कोई मतभेद नहीं, ना छोटा ना बड़ा, भाई मैं तो बहुत ऊंच हूं और आप तो अभी नए हैं, नहीं। बाबा ऐसे बातें करते रहे। बाबा की आयु 83 थी और मैं 16-17 साल की थी। बाबा बातें करते रहे 20 मिनट तक। कुछ बातें मुझे जब बाद में याद आई, मैंने कहा तो बाबा ने पहले दिन ही कही थी, क्योंकि बाबा को हम सब का पाठ तो मालूम है, हमें नहीं पता है, पर बाबा को तो पता है ना। तो त्रिकालदर्शी शिव बाबा हैं, पर वो त्रिकालदर्शी का गुण प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा के द्वारा अनुभव हुआ। तो शिव बाबा के गुण ज्ञान शक्तियां ब्रह्मा बाप के द्वारा प्रत्यक्ष हुई ना। तो हम सभी आजकल बहुत कहते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? ठीक है, वीआईपी की भी जरूरत है, उनकी आवाज सुनते हैं, वो सब जरूरी है, पर प्रत्यक्ष करने के लिए कौन जिम्मेवार है? बोलो, हम सब बच्चे हैं, सभी बाबा को प्रत्यक्ष करने हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, एक एक पर बाबा को प्रत्यक्ष करने की। थोड़े दिन पहले की मुरलियों में बाबा ने बहुत स्पष्ट किया कि अभी हरेक बच्चा बाप समान बनते जाओ और बाप को प्रत्यक्ष करते जाओ। करेंगे सभी बाबा को प्रत्यक्ष? करेंगे। अच्छा, उसमें पहले पहले जैसे मैंने बताया ना कि दुनिया में लोग कहते हैं हम परमात्मा के अंश हैं और हम परमात्मा के वंश हैं। अंश नहीं है, वंश है। तो जो वंश का होगा उसमें समानता तो होगी ना। मैं सिर्फ ये बात रियलाइज आप सबको अनुभव होती होगी कि पहले दिन से किस वंश के हैं, किस कुल के हैं, किसकी संतान है, तो अपने अंदर जैसे वो समानता की फीलिंग आनी चाहिए। अहंकार की बात नहीं है, अभिमान की बात नहीं है, परंतु पहचान है ये कि मैं जिसकी संतान हूं मैं उस समान ही हूं। अगर ये विश्वास नहीं तो आप कैसे आपकी परसेंटेज बढ़ाएंगे? मैं हूं ही नहीं बाप समान तो बन भी कैसे सकती हूं? जिस कुल की हूं, जिस वंश की हूं, जिस माता पिता की संतान हूं, मैं उस जैसी हूं। तो अपने अंदर अपना दैवी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, बाप समान स्वरूप, अंदर दिखाई फील हो। मैं तो हमेशा ही बचपन से ही ऐसा लगता था कि अंदर एक छोटी सी देवी बैठी हुई है, एक छोटा सा फरिश्ता बैठा है। तो मैं सबको कहती हूँ कि हम लोग चाहे बेबी फरिश्ते हैं, पर हैं तो फरिश्ते ना, क्योंकि फरिश्ते की संतान कौवा तो नहीं होगा ना, फरिश्ते की संतान फरिश्ता होगा। तो थोड़ा इसको ग्रहण करो, आभास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो जो रस बैठ जाएगा ना, फीलिंग्स जो आएंगी, अनुभव जो होगा। आप सभी मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? मतलब दिल स्वीकार करे आपको, ऐसा आपको खुद से अनुभव हो। तो जब मुझे पहले दिन योग सिखाया गया, जो बहुत जिस बहन ने भी सिखाया बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें बाबा से जब कनेक्शन जोड़ना है तो दो शब्द हैं, चाहे पहला पहली बार बोलो चाहे दूसरा, बाबा ज्ञान के सागर हैं। राइट, बाबा प्रेम के सागर हैं और मैं क्या हूं, प्रेम स्वरूप हूं। बाबा ने मुझे मेरी पहचान दी है, मैंने बाबा को भी पहचाना, मैं स्वरूप हूं और बाबा सागर है। एक सेकंड में योग लग जाएगा, लेकिन मैं अशांत हूं, आज तो मैं दुखी हूं, आज मैं बाबा के पास जाते हैं ये समस्या है वो समस्या है। मैं तो कहती हूँ बाबा के कमरे में जैसे जूते उतार के जाते हो ना, सब प्रॉब्लम छोड़ के जाओ। कई सोचते हैं ले जानी है अंदर, बाबा ठीक करेगा। मैंने कहा जूते भी उतारो और अपना व्यर्थ भी यहीं छोड़ो। बाबा का कमरा इसलिए नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम्स ले जाओ ये वो, बाबा का कमरा तो है वरदान लेने के लिए, शक्ति भरने के लिए। तो मैं अशांत स्वरूप हूं और बाबा आप शांति के सागर हैं। योग लगेगा, बाबा आप तो ज्ञान के सागर हैं, मैं तो अज्ञानी स्वरूप हूं। नहीं, बाबा क्या चाहते हैं, तो मैं स्वरूप हूं बाबा सागर है। जिसको कई लोग कह देते हैं बूंद है वो सागर है, पर बाबा वो उस तरह से नहीं, स्वरूप है। तो आप अंदर में एक छोटा मंदिर तैयार करो जिसमें अपनी मूर्ति रखो। नहीं, एक बहुत सुंदर गीत है, ये दिल एक मंदिर है। तो मंदिर पवित्र भी होता है, दर्शन योग्य होता है। तो ऐसा परिवर्तन हरेक अपने में लाए कि मेरा जो निजी स्वरूप है, निजी स्वरूप जो है, एक अनादि स्वरूप है एक आदि स्वरूप है। तो जो अनादि स्वरूप है मेरा, वो बाप समान है, और आदि स्वरूप फिर बाबा मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो हम सभी वही स्वरूप हैं। तो जब तक हरेक को अपना वो स्वरूप प्रकट न दिखाई दे, तो सिर्फ ये एक स्मृति और स्वरूप, और फिर बाबा की दृष्टि। हम लोग क्यों आते हैं व्यक्त बाप दादा से दृष्टि लेने, बाबा के घर में अलौकिक वातावरण में बाबा से जब दृष्टि लेते हैं, तो बाबा हमको किस दृष्टि से देखते हैं, अच्छा अनुभव क्यों होता है। अगर बाबा ये देखे आप आज क्या हो, आप में क्या कमजोरी है, तो आपको कोई अनुभव नहीं होगा। पर बाबा सबको एक संपन्न स्थिति में, संपूर्ण स्थिति में, रियली हम एक दूसरे के प्रति जब ऐसी दृष्टि रखें, तो हरेक को कितना अच्छा अनुभव होगा, कोई मतभेद नहीं होगा, भिन्नता होते भी एकता होगी, बहुत रूहानी स्नेह होगा, एक दूसरे के सहयोगी होंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे। किसी ने कहा कि कैसे पता चले कि मैं प्रेम के सागर में समाई हुई हूं। नहीं, बाबा ने कहा समाए रहो। मैंने कहा अगर आप दिन भर प्रेम स्वरूप हैं, क्योंकि आप प्रेम में समाए हुए हो, तो अभी थोड़े से समय में ये अपना स्वरूप प्रकट करो। नहीं, एक बार बाबा ने कहा अभी इमर्ज रूप हो, मर्ज नहीं चाहिए, इमर्ज चाहिए। एक बार एक कोई भाई आए, थोड़ा सा वो थेरेपी वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा, तो मिलने आए। तो थोड़े दिन के बाद जब वो जाने लगे, कहते हैं मैं देवी का पुजारी हूँ और मैं बहुत प्यार है मेरा, एक मंदिर है जहाँ जाता हूँ और रोज देवी को कहता हूँ, तुम मंदिर से कब निकलोगी बाहर, इस मंदिर से कब निकलोगी, कब मेरे से मिलोगी। तो वो अपना अनुभव सुना रहा था कि मैं जब यहाँ आया और मिला तो मुझे ऐसा लगा मेरी देवी अब मंदिर से बाहर आ गई है। तो मेरे को सिर्फ ऐसा लगा, मैं सब बहनों को भाइयों को कहने लगी भाई मंदिर से बाहर निकलो। तो अपना स्वरूप बाबा को सामने रखते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करें, पर बाबा कहता है होगा आप लोगों के द्वारा। कुछ महीनों से सालों से बाबा ने ये निमित्त बनने का पाठ दिया है, तो हमेशा मुझे यही रहता है कि हम सभी निमित्त हैं और निमित्त बच्चे, जिसमें सबसे बड़ा गुण जो हमने ब्रह्मा बाबा में देखा, नम्रता। बाबा को अथॉरिटी थी, ऑलमाइटी अथॉरिटी के अलावा भी, बाबा तो आपको पता है लौकिक में फिर अलौकिक में बहुत दिव्य थे, बहुत दिव्य, इतनी अलौकिक था बाबा में थी, पर नम्रता बहुत थी, क्योंकि किसी भी प्रकार का अभिमान, किसी भी बात का अहंकार, तो जो कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सबसे ऊंची मंजिल से गिरना होता है जब अहंकार आता है। मैं ये एक तरफ तो मैं हूं, मैं यही बता रही हूं स्वरूप का, पर जो लौकिक देवान का जो स्वरूप होता है, तो स्नेही सभी सदा स्नेह की मूर्त और सम्मान देना सबको। बाबा बच्चे आते थे बड़े सबको इतने सम्मान से, जब हम लोग पहली बार बाबा से मिलने आए तो हिस्ट्री हॉल था, तो बाबा और मामा नीचे गद्दी गद्दी कहूँ कुशन कहूँ उस पर दोनों बैठते थे, उस ऊंची वाली गद्दी पे नहीं बैठते थे, मतलब फ्लोर के ऊपर ही बाबा बैठते थे दोनों, फिर दृष्टि देते थे, मिलन मनाते थे। तो उस समय एक समान भाव, स्नेह और समान और सहयोग, बाबा में ये बहुत बड़ी विशेषता थी, नम्रता। और दूसरा, आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि बाबा को कभी क्रोध नहीं आता था, कभी नहीं, लौकिक में भी नहीं और अलौकिक में। बाबा की लौकिक में बच्ची थी, फिर अलौकिक में बनी निर्मल शांता दादी जो कलकत्ता में थी, वो कहती थी कभी नहीं बाबा ने, हम बच्चे थे तो डांट लगाई, या कभी भी नहीं, मधुरता। तो किसी को भी, तो कई कहते हैं सदा मधुर है तो लोग सुनेंगे नहीं हमारी, तो कभी जोर से बोलना पड़ता है। जोर से बोलने से कोई डर से कर लेगा, पर दिल से तो नहीं करेगा ना। और तीसरा बाबा में सदा हर्षित, बाबा का चेहरा सदा ही मुस्कुराता था, हर्ष सदा। विजय रतन हूं, कल्याणकारी हूं। तो बाबा, आपने सुना है पिकेटिंग हो रही है, बच्चों को, छोटी आई वालों को माँ बाप ले जाने के लिए आए हैं और ये लोग जाना नहीं चाहते। नहीं तो आपने देखा है आपके बच्चे हैं, सवेरे से ही माँ बाप वो आ गए रिश्तेदार, और 2 बजे तक वो बाहर खड़े रहे, ना पानी पिया। बहुत उन्होंने कहा रिश्तेदारों ने, भाई पानी तो पी लो। नहीं, कमाल है, इतने छोटे छोटे बच्चे, कोई जाना नहीं चाहता, और बाबा ऊपर खड़े हैं और हर्षित है। तो ये जो आजकल चल रहा है ना, निश्चय, निश्चित एंड निश्चिंत, बेफिकर, थोड़ी थोड़ी फिकर तो लगती है ना सबको कि नहीं, किसको कभी फिकर नहीं होती। कोई तो हाथ खड़ा करो, सब कहेंगे थोड़ी थोड़ी लगती है ना। और बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा शब्द, समटाइम्स वाला शब्द पसंद नहीं आता है, मुझे तो सदा वाला शब्द पसंद आता है। तो हर्षित मुक्ता, बाबा में इतनी धैर्यता थी। दादी प्रकाशमणि सुना रही थी कि बाबा के विरोध में समाज में बहुत कुछ आता था। तो पहले पंचायत होती थी, कोर्ट तो अभी बने हैं ना, पंचायत होती थी। तो पंचायत का बड़ा है, वो बुलाता था दोनों, तो बाबा को भी बुलाया और जिसकी कंप्लेन थी उसको भी बुलाया। तो जिसकी कंप्लेन थी तो पंचायत वाले, भाई आप पहले बोलो, आपको क्या क्या शिकायत है। तो वो अपनी लंबी कहानी सुनाने लगा और बाबा के लिए भी भला बुरा बोलता रहा। तो बाबा शांत बैठे थे, तो ये प्रकाशमणि दादी कहती है, मैं भी बैठी हुई थी बाबा के साथ, तो मेरे को बहुत कि मैं इसको रोकूं, अभी बंद करो, फिर बंद और नहीं बोलो। और दादी बार बार कहे, बैठ जाओ, मतलब हाथ से कहती थी, क्योंकि उनको होता था मैं कोई जवाब दूं और बाबा ऐसे करूं। फिर जब सब पूरा हो गया 1-2 घंटे के बाद, तो पंचायत ने फैसला दिया कि तुमने इतना कुछ बोला पर ये व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोला, न अपने डिफेंस के लिए और न आपके लिए कुछ बोला, न अपने के लिए कहा कि नहीं मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, मैंने नहीं किया। तो धैर्य था। दादी प्रकाशमणि जी कहती है, मैंने सुनने की शक्ति बाबा से सीखी। कहता है कोई कहने दो, कई कहते हैं इसको रोकना ही पड़ेगा, इसको ये करना ही पड़ेगा। तो धैर्यता, सत्यता, जो भी परमात्मा के गुण हैं वो बाबा साकार के जीवन में दिखाई पड़ते थे। तो बाप समान बनने के लिए क्या करना है। तो बाबा की खजाने हमें भरे हुए हैं पर हम यूज नहीं करते, अधीरे हो जाते हैं बहुत जल्दी। देखो आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मैं आज ये सोच रही थी कि देखो प्रकृति की तरफ से सब कुछ मिला है मनुष्य को, पर मनुष्य जो प्रकृति से मिला है उसको खत्म करने में लगे। प्रकृति सब देती है। सवेरे आप उठिए, एकदम हवा शुद्ध है, ऑक्सीजन है, वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है, और आज छोटी मोटी हवा का पोल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन जो बॉम्ब्स चलते हैं उसका जो धुआं है, उसकी जो रेडिएशन है, हवा के अंदर जो दूषित हो जाते हैं, या किसी के पास तेल का भंडार है, ये जला दो जला दो, एक बॉम्ब वहां भी लगा दो वहां भी लगा, तो अपने को जो प्रकृति ने इतनी सब कुछ दिया है मनुष्य के सुख के लिए, आज मनुष्य खुद ही उसको खत्म करता जा रहा है। दो तीन दिन पहले बोला आज आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा गैस का, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है ये तो। कहते हैं क्यों, मिलना चाहिए। मैंने कहा हाँ वो तो प्रबंध हो जाएगा, पर मेरे को यज्ञ के शुरू की याद आ गई। हम लोग जब यज्ञ में आए तो पांडव भवन में किचन था और बहुत बड़ा चूल्हा था, वो लकड़ी से रोटी खाना बनाते थे, लकड़ी के ऊपर ही रोटी पकती थी। लकड़ी आप लोगों ने कभी देखा है लकड़ी पर खाना बनता? तो मैंने हंसी में कहा, मैंने कहा चलो अब लकड़ी पे बनाएंगे खाना। तो घबराहट की बात, कोई भी बात घबराहट की नहीं है, फिक्र की नहीं है, लेकिन अपनी जीवन को जिसको बोलते हैं ना सिंपल बनाते जाओ। साधारण शब्द इतना ठीक लगता है, सिंपल मतलब जितना हो सके, जितना जरूरी है, जहां जरूरी है हर प्रकार से। दादी गुलजार के टाइम भोग लगाया तो बाबा ने कहा समेटो और सफल करो। बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है। चलो बाबा का भंडार है, भरपूर रहना ही चाहिए, पर अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत सिंपल हो। दादी जानकी कहती थी सच्चाई, सफाई और सादगी, सादगी सिंप्लिसिटी। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति अनुसार आज भी दोनों तरफ से सुलह करने की कोई बात नहीं है, अहंकार कहो, क्रोध कहो, बदले की भावना कहो, इतनी ज्यादा है उसकी अग्नि कि कोई सुलह करने को तैयार नहीं। तो और खत्म करो, और खत्म। अच्छे अच्छे देश, उन्होंने सोचा ही नहीं था हमारे ऊपर हमला होगा, तो उन्होंने बॉम्ब्स रखे नहीं, और अभी सभी सोचते हैं खरीद लो, ज्यादा खरीद। मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ी शॉपिंग आजकल बॉम्ब्स की हो रही है, बॉम्ब्स की शॉपिंग हो रही है। तो उससे हमको बाबा का जो इशारा मिलता है, तो फिक्र नहीं करनी है। आज भी बाबा ने कहा बाबा रक्षक भी है, बाबा शिक्षक भी है। ब्रह्मा बाबा के टाइम पर देश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, बहुत ही हालत अच्छी नहीं थी। और जब धर्म का युद्ध होता है ना, तो उसमें चरित्र, माताएं बहनें सबका बहुत बहुत डर रहता है। तो बाबा ने सबको क्या बोला कि बच्चे देही अभिमानी होके तपस्या करो, आपके ऊपर किसी की नजर भी नहीं जाएगी। तो हम लोग मधुबन आते हैं, अच्छा वातावरण है, तो हम लोग जब पहले आते थे दादी प्रकाशमणि कहते मधुबन साथ में लेके जाओ। तो मैं आपको एक छोटी सी इस पर समय हो रहा है एक कहानी सुनाती हूँ कि एक यहाँ मिनिस्टर आया था किसी देश का, आधे दिन गवर्नमेंट ने उसको रात ठहरने के लिए परमिशन नहीं दी थी क्योंकि सिक्योरिटी बहुत चाहिए थी, तो उसको आधा देना ने दिया। तो आया वो बाबा के कमरे में, गया ब्रह्म भोजन खाया, सारे परिवार से मिला, बहुत साल की बात। फिर वो वापस चला गया। तो जब वापस गया तो उस देश में कोई विद्रोह हुआ। तो जब विद्रोह हुआ तो जो सरकार थी उनके जितने भी बड़े थे सबको उन्होंने बंदी बना लिया। और जिन्होंने बंदी बनाया आतंकवासी थे, आतंकवादी राइट, टेररिस्ट इनको कहते हैं, तो वो उनको बंदी बना के एक बड़े हॉल में रखा हुआ था। तो वो लोग तलवार अपना बंदूक लेके घूम रहे थे। तो वो जब इस मिनिस्टर के सामने जाए तो बंदूक नीचे कर दे, कईयों को उन्होंने पैर में बंदूक मारी। पर ये कहता है कि मैं उसी दिन वहां उस देश में पहुंची, तो आते ही मुझे कहता है कि थोड़ा रेडियो टेलीविजन में कोई शांति का संदेश दो, सभी बहुत डरे हुए हैं ये वो। फिर मुझे उसने बताया कि मैं जो मधुबन होके आया था ना, तो मैं बार बार जैसे मैं मधुबन में हूँ, मैं मधुबन हुए, मैं मधुबन के अनुभव को बार बार इमर्श कर रहा था। इसलिए वो लोग जब मेरे सामने से निकलते थे तो वो शांत हो जाते थे। तो फिर उन्होंने उसको ही मतलब कैद से छुड़ा के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया कि अभी आप जब तक इलेक्शन हो आप प्रेसिडेंट रहना। तो मुझे ये लगता है कि कोई आधे दिन के लिए दिल से मधुबन लेके गया, उसकी कैसे रक्षा हुई। और आज हम लोग इतना समय मधुबन रहते हैं तो हम अपने साथ क्या ले जाएं। हर एक अपने साथ, बाबा का जो घर है, बाबा का जो परिवार है, जैसे एक वाइब्रेशंस ऐसी अपने साथ हम ले जाएं कि अपनी रक्षा के लिए और दूसरों की रक्षा। मैं सिर्फ अपना तो नहीं सोचूंगी ना, सभी अपने भाई बहन है, सभी की रक्षा हो। तो इसलिए कहते हैं वृत्ति से वातावरण बनता है। तो हम अपने साथ मधुबन से बाबा की याद, सुंदर पवित्र वातावरण, ऐसी वृत्ति, ऐसा मधुबन अपने साथ ले जाएं। और जहां भी अचानक कुछ होता है, हम लोग एक दो बार एयरपोर्ट पर प्लेन नहीं गया, कुछ होता ही रहता है भाई। अभी तो बेचारे 100 के करीब फॉरेनर्स अभी भी बैठे हैं। कल मैं ज्ञान सरोवर क्लास कराने गई तो 700 फॉरेनर आए। हमने सोचा थोड़े आएंगे, लड़ाई लग रही है और कई तो जा ही नहीं पा रहे हैं, अभी तक उनको प्लेन नहीं जा रहे हैं, तो भी 700 आए। कोई तो कहते हमको 3 दिन लगे पहुंचने में, एक दिन प्लेन कैंसिल हुआ, पर हमने कहा हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, ये तो हमारा लास्ट टाइम है। तो कल मैंने देखा बहुत एकदम वो जो हारमोनी हाउस है ज्ञान, एकदम फुल था। तो जो बाबा कहते हैं कि अचानक कुछ होगा पर आप एवर रेडी रहो। किस बात पे एवर रेडी? सिर्फ घर जाने में, घर जाने से पहले या कुछ सेवा भी करनी है? घर जाने की बात नहीं है, पर हमारी जो अंतिम परीक्षा है अचल रहने की, अडोल रहने की, एक रस रहने की, वो परीक्षा हमको पास करनी है। तो मेरा ये सब सुनाने की भावना एक तो ये है कि आप अपना स्वरूप याद रखो, स्मृति लाओ और वो स्वरूप को प्रकट रखो, अलौकिकता, आपकी दृष्टि वृत्ति सब कुछ एकदम अलौकिक। ये स्वरूप अपना बनाओ भी, प्रकट भी करो, तो हम कदम कदम पर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे और बाप समान 100% हमको बने रहे। तो इस तरह से अगर हम मधुबन से ये गिफ्ट लेके जाएंगे तो जो नहीं आए हैं, बहुत बड़े बड़े परिवार नहीं आ सके हैं, उनको भी आपसे अनुभव होगा और अन्य आत्माओं को भी बहुत अच्छी आपसे सेवा होगी, प्रेरणा मिलेगी और आप अंदर में बहुत संतुष्ट रहेंगे। आज यूएन की तरफ से, मुझे तो पता नहीं था, याद नहीं रहता इतना, तो आज सवेरे अव्यक्ति परिवार में वो लोग यूएन की तरफ से डे ऑफ हैप्पीनेस आज के दिन है, तो आप सबको भी मुबारक हो डे ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहो, सदा खुश नमह रहो और खुश नसीब रहो। खुश रहो, खुश नमा मतलब आपके चेहरे पर चलन में, और खुश नसीब मतलब आपके नसीब में सदा खुशी खुशी रहे। ऐसा कहते हुए मैं फिर से, अभी हम कुछ मिनटों के लिए बाबा की याद में बैठेंगे, थोड़ा इमर्श करो अपना स्वरूप, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, ये इमर्श करके उस स्वरूप का खुद भी एक सुख लो, अतीन्द्रिय सुख लो, और एक ऐसा विश्वास, आत्मिक विश्वास कि मैं ये हूँ और मुझे ऐसा ही बने रहना है, बनना नहीं है, बने ही रहना है, यानी ऐसी स्थिति हमारी निरंतर है। ओम शांति।
दीपक संग का मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई।
तार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई।
नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा। उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा।